الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے انسان ایک حیرت انگیز تخلیق. اینڈ ان دس پروگرام وی ڈسکس اباؤٹ دا مارولز آف ہیومن باڈی, امیزنگ پارٹس وی ہیو بن بلیسڈ ود. مختلف انسانی اعضاء پر ہم بات کرتے ہیں, کچھ اس میں جو اناٹمی ہے, بیسک سائنس ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور پھر ان اعضاء کا ہمیں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے, اس حوالے سے بھی قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرتے ہیں, احادیث کریمہ بھی سنتے ہیں. آئیے آج جس عضو کی ہم بات کریں گے کچھ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. پہلے اس عضو کی, اس آرگن کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا, اسے. در حقیقت جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے, کسی دوسری چیز کو اس قدر خیال رکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ زبان کی آفات بہت زیادہ ہیں اور انسان کے سر پر گناہوں کا بوجھ اس کی آفات کی وجہ سے بہت بڑھ سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان روزانہ صبح بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر اسے تاکید کرتے ہیں کہ تو دن بھر درستی اور صداقت پر قائم رہنا اور بےہودگی سے بچتے رہنا, کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے, اور اگر تو کج روی کے رستے پر چلے گی, یعنی نیگیٹو ہو جائے گی, ٹیڑے رستے پر ہو جائے گی, تو ہم بھی کج روی کے رستے پر چل پڑیں گے. اور واقعی the whole body has to bear the brunt of what tongue has said and done. زبان سے اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو سب کو اس کا پتہ ہے, تجربہ بھی ہے, اندازہ بھی ہے کہ پورے جسم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. مثلا اگر زبان کو ایسی بات کر دے جو کہ جھگڑے تک نوبت آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے چوٹ وغیرہ تو جسم کے دیگر اعضاء پر اور دیگر حصوں پر لگ سکتی ہے. So use your speech wisely and select the words carefully. اپنے الفاظ کو بڑے ہی سوچ سمجھ کر چنیں اور اپنے پاس الفاظ کا ایسا ذخیرہ رکھیں, موڈیسٹی کے ساتھ, بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اچھے الفاظ کو چنیں, اچھے لقب کے ساتھ دوسرے کو پکاریں. یاد رکھیے یہ آپ کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے, اٹ بیکمز یور برانڈ. اب ہمسائے ہیں, رشتہ داروں میں آپ ہیں, اپنی آفس میں ہیں, اپنے کاروبار میں ہیں, یہ چیز آپ کا برانڈ بن جائے گی کہ یہ کس انداز سے کلام کرتا ہے. تو انسانی جسم کی اگر ساخت کو دیکھا جائے تو منہ یعنی ماؤتھ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اینڈ ٹیتھ آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا اسٹار. اور دانتوں کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اس کی ایک کمرشل وجہ بھی ہے, ظاہری بات ہے بہت زیادہ ٹوتھ پیسٹ اور اورل ہائیجین کے اوپر بات ہوتی ہے تو دانتوں کے اوپر بہت زیادہ کوریج ہوتی ہے, لیکن زبان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یو کینٹ اگنور دا امپورٹنس آف یور ٹنگ. مختلف مسلز مل کر زبان بناتے ہیں. اینڈ اٹ اف اٹ کمز ٹو ورسٹیلٹی, یعنی مختلف کاموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, کوالٹیز کی اگر بات آئے, تو جسم کا سب سے مضبوط اور سٹرونگسٹ مسل زبان کو کہا جا سکتا ہے. اچھا یہ دیگر بھی جسم میں مسلز ایسے ہیں جن کو مضبوط کہا جاتا ہے کسی اور اعتبار سے, لیکن اگر ورسٹیلٹی کی بات کی جائے تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے زبان سٹرونگسٹ مسل ہے. تو یہ ایک موویبل سیٹ آف مسل ہے, یہ ایسا پٹھا ہے جس کو ہم ہلاتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم بولتے ہیں, چوستے ہیں, نگلتے ہیں, چکھتے ہیں, ذائقہ محسوس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام بیہائنڈ دا سین وہ زبان کر رہی ہوتی ہے. زبان کو اگر آگے کی طرف سے دیکھیں تو یہ ہینگنگ سٹیٹس پر ہے, یعنی آگے سے یہ موو کر سکتی ہے, دائیں بائیں بھی, اوپر نیچے بھی, اٹس اے ہینگنگ سٹیٹس. لیکن پیچھے کی طرف سے یہ حلق کے اوپر والے حصے کے ساتھ وائس باکس اور نچلے جبڑے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, इसका जो बैक एंड है आप समझ सकते हैं कि वो हल्के ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है और निचले जबड़े के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर इस बात पे फोकस किया जाए कि एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर टंग, जबान का काम क्या है और इंसानी जिस्म में इसकी अहमियत क्या है, तो देखिए बुनियादी तौर पर तो खाना खाने में और इसको कोई चीज सक करने में, चूसने में, जैसे स्ट्रॉ से अगर आप कोई लिक्विड पीते हैं, ये दोनों काम इसके अंदर होते हैं, और थूक के निजाम को मैनेज करने में, और स्लाइवा जो है थूकने में, इसको अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। और कुछ ही देर में अभी अपने प्रोग्राम के अंदर हम थूक के ऊपर, स्लाइवा के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि जबान जो है वो चूसने के लिए काम आ रही है और थूक के निजाम को मैनेज करने में, और फिर चखने में, बोलने में, और जिस्म को जरासीमों के खिलाफ दिफा करने में भी ये काम आती है। जबान का कुदरती रंग वो पिंक है, गुलाबी, और जबान मुलायम नहीं होती बल्कि रफ स्ट्रक्चर है ये। यूं समझ लें कि जबान के ऊपर छोटे छोटे बम्प्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई हैं जिन्हें पेपिला कहा जाता है। इसके साथ जबान पर हजारों टेस्ट बड्स हैं, यानी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो जायका महसूस करने के हवाले से मौजूद हैं। पुरानी जो कदीम तहकीक है साइंस की, उसके मुताबिक जबान के ऊपर एक मैप बना होता था कि जबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ किस्म का जायका महसूस कर सकते हैं। अब ये तहकीक बदल चुकी है क्योंकि साइंस का फिनोमेना यही है कि साइंस इज इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, साइंस मुसलसल तरक्की के स्टेज में है। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो साइंस के मुताबिक अब ऐसा नहीं है बल्कि पूरी की पूरी जबान ही हर किस्म का जायका वो महसूस कर सकती है। अगर आप जबान की टिप के ऊपर नमक रखेंगे, यहां भी आपको नमक का जायका आएगा, पीछे नमक रखेंगे, पीछे भी नमक का जायका आएगा। हो सकता है जिन्होंने ये मैट्रिक और दीगर ऐसी क्लासेस पढ़ी हैं उनको याद होगा, जो पुराने कुछ दौर के थे, ये बायोलॉजी की किताब में नक्शा बना होता था, बट दिस थ्योरी इज नाउ रिडंडेंट, नॉट इन यूज नाउ। द होल टंग इज 100% कैपेबल टू टेस्ट एनी जायका, किसी किस्म का भी जायका वो कर सकते हैं। तो याद रखिए टेस्ट बड्स का एक जाल हमारी पूरी जबान पर बिछा हुआ है। चार किस्म के जायके होते हैं जी, एक होता है स्वीट मीठा, एक होता है सॉवर खट्टा, एक होता है बिटर कड़वा, और एक होता है सॉल्टी यानी नमकीन, सेवरी भी एक टेस्ट कहा जाता है, बहरहाल बहुत शाज़ो नादिर है। जब इंसान कुछ भी खाता है या पीता है तो जबान पर मौजूद ये टेस्ट बड्स, ये जायका महसूस करने वाली फैक्ट्रियां, ये वो जायका लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं और ये सिग्नल्स होते हैं जिनकी मदद से जायके का तायुन होता है। अच्छा, एक और बात यहां पे आपसे शेयर करता चलूं कि अगर किसी को अपनी जबान सफेद लगे कि जबान वाइट है तो इसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो याद रखिए कि ये कोई खतरनाक बात नहीं है, इफ यू हैव अ वाइट टंग सो दिस इज नॉट वेरी डेंजरस, बट लेट्स लिसन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाइट टंग, कि इसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले तो बैक्टीरिया, जरासीम, फंजाए, गंद, खाना, मुर्दा खलिये, ये जबान पर मौजूद हैं, इनकी वजह से जबान सफेद हो सकती है। और बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में जबान का सफेद होना ये इन्फेक्शन की या कैंसर की इब्तदाई अलामात भी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ और अलामात भी आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जबान सफेद है, हो सकता है परसिस्टेंट बुखार चढ़ रहा हो, खून आ रहा हो, और भी चीजें हो सकती हैं। आम तौर पर ये जबान सफेद क्यों होती है, मैंने आपको अर्ज किया बैक्टीरिया जरासीम की तह जम जाती है, और अगर सही तरीके से मिसवाक, ब्रश या खलाल ना किया जाए, ड्राई माउथ, माउथ मुंह सूखा रहे, आप उसको गीला नहीं कर रहे पानी वगैरह से, मुंह के जरिए आप ज्यादा सांस ले रहे हैं नाक से नहीं ले रहे, और पानी या फ्लूइड्स आप मुनासिब मिकदार में नहीं पी रहे। आजकल रमजान है, याद रखें रमजान के अंदर पानी आम तौर पे ज्यादा पिया जाता है दीगर दिनों की निस्बत से, लेकिन इसका एक तरीका होना चाहिए। अगर हम इफ्तार में ज्यादा पानी पी लेंगे तो मसाने पर और गुर्दों पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है और ये कई बीमारियों को ये चीज लीड कर सकती है। सो ट्राई टू राशन योर वाटर इनटेक, अपने पानी पीने को थोड़ा सा एक प्लान बना लें, दो ग्लास इफ्तारी पर पी लिए, हर आधे घंटे बाद एक एक ग्लास या आधा आधा ग्लास पी लिया, और फिर सुबह सहरी में इसको मैनेज कर लिया, आठ ग्लास पूरे कर लिए जी। और ये भी याद रखें कि अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मियों के दिन है, तो पानी जिस्म से उड़ता कहाँ कहाँ से है, कहाँ से लूज करता है इंसान। एक तो सांस लेने से पानी जाता है, एक पसीने से पानी जाता है, और एक पेशाब से पानी जाता है। ये तीन तरीके हैं। तो जो लोग रमज़ान में ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने इस रूटीन को थोड़ा एडजस्ट करें ताकि रोज़े के अंदर आपको प्यास ज़्यादा महसूस ना हो। और इसी तरीके से नरम खाने खाए जाएं। बुखार अगर किसी को चढ़ता है, तंबाकू नोशी करता है, या अगर कोई शराब नोशी जैसे गंदे काम में मुलव्वस है, उसकी जबान में भी ये सफेदी आ सकती है। बहरहाल अगर इसका ये रहती है सफेदी, तो आपको इलाज की जरूरत नहीं है। हाँ, सॉफ्ट ब्रश से आप इस लेयर को उतार सकते हैं और बहुत सारा पानी पी के इसको फ्लश आउट कर सकते हैं। गंद है ना, फिल्म बड़ी हुई है, तय बनी हुई गंद की, तो पानी पियेंगे तो ये फ्लश आउट हो जाएगा। हाँ, अगर जबान सफेद हो जाए और इन अलामात जो मैं अभी आपसे अर्ज़ करूंगा वो अलामात सामने आए, तो जरूर जल्दी डॉक्टर से राबता करें। मसलन आपकी जबान में दर्द हो रही है, और जब भी आप कुछ चबाते हैं, निगलते हैं, मुंह में रखते हैं, तो दर्द बढ़ जाती है, जैसे जल रही है जबान, जबान पे छाले आ जाते हैं, सॉवर्स बन जाते हैं, अल्सर बन जाता है। आपको चबाने में, निगलने में और बात करने में मुश्किल होना शुरू हो गई है। आपको बुखार, वजन में कमी या जिस्म में रैशेज यानी निशानात लाल रंग के जो होते हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं, तो अब ये वो अलामात हैं कि आपको जरूर बिल जरूर जल्दी डॉक्टर से राबता करना चाहिए। याद रखिए, हमारा पूरा जिस्म एक नेटवर्क है, पूरा जिस्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी एक जगह में कोई बीमारी आ रही हो तो किसी दूसरी जगह पर उसके आसार आते हैं। और ये जो हमारी स्किन है ना, ये तो समझ लें एक सबसे पहला जरिया है बीमारी का पता करने का, कि स्किन के ऊपर वो बीमारी नमूदार होगी, दाने आएंगे या कुछ इस किस्म की चीज होगी। तो आमतौर पे ऐसी कोई बात हो, हम लोग ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरा सी भी कोई बात पता चले, फौरन मेडिकल एडवाइस लें। वरना होता क्या है, हजरत घर आए, आके आराम से दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, दर्द हुई, ओ जी पेट की दर्द होगी, गैस की दर्द होगी, चौथे पांचवें मिनट के अंदर पता चलता, दिल का दौरा पड़ रहा था। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज आपको चेंज होती महसूस हो, वजन कम हो रहा है, अचानक कम होना शुरू हो गया है, और खांसी जा नहीं रही, बहुत अरसा हो गया है, बुखार नहीं जा रहा, थोड़ा सा रहता ही है, तो ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। वी मस्ट गो फॉर द डॉक्टर, क्योंकि अगर आप शुरुआत में उस चीज को पकड़ लेंगे तो वो चीज बड़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, अच्छी दवाई, अच्छे परहेज के साथ शिफा मिलने के चांसेस है। क्या आप जानते हैं कि जबान एक मिनट में 90 अल्फाज अदा कर सकती है, 30 मुख्तलिफ मूवमेंट के साथ। स्पीच यानी बोलना इसी तरह मुमकिन होता है कि हवा हमारे फेफड़ों से निकलकर मुंह से बाहर जा रही होती है, और फिर जबान, होठ और दांत, इन तीनों की मुश्तरका कोशिश होती है कि हम अल्फाज अदा करते हैं, दे वर्क टुगेदर। जराफे की जबान जनाब 18 इंच लंबी होती है, 20 इंच तक लंबी भी हो सकती है। अल्लाह अज़्ज़ावजल के हर काम में हिकमत है। दर हकीकत जराफे का जो पसंदीदा पत्ता है ना, अरेसिया ट्री, उसके पत्ते के गिर्द कांटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो लंबी जबान से ना वो पत्तों को डायरेक्टली पकड़ लेता है। अच्छा, यहां एक और हैरत की बात सुनिए, अगर तो वो कांटे उसको लग भी जाए जबान पे ना, लग जाए और जबान जख्मी भी हो जाए, तो अल्लाह की तरफ से जराफे को एक्स्ट्रा थिक सलाइवा यानी ज्यादा गाढ़ा थूक दिया गया है, जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसकी दमा, उसकी जबान में जो थूक है, उस थूक के अंदर एंटीबायोटिक दवाई है, जिसकी मदद से वो जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जराफा दिन में 12 घंटे खाने में गुजारता है, सबसे बड़ी जबान इसकी होती है। बहरहाल जबान का एक अहम काम मैस्टिकेशन भी है, इसका मतलब जो खाना आप खा रहे हैं उसे थूक के साथ मिलाया जाए, ये ग्राइंड होता है ना, चक्की है, इंसान अपने दांतों से खाने के बड़े बड़े निवालों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। तो यहां जबान का क्या काम है कि खाने को दोनों दांतों के दरमियान एडजस्ट करके रखे, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, इन दोनों के दरमियान पोजिशन करके रखे, ताकि दांतों को चबाने का मौका मिले और थूक इसके साथ मिल जाए, स्लाइवा, थूक, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। थूक बहुत ही जबरदस्त नेमत है जी, इट्स अ क्लियर लिक्विड, साफ लिक्विड है और इसमें ज्यादातर तो पानी होता है, लेकिन दर हकीकत खाने को हजम करने में बहुत मुबीद मुआविन है। दांतों को मजबूत करता है, आपके मुंह को गीला और आरामदेह रखता है, मुंह में मौजूद जरासीमों को मारता है, बदबू मुंह से नहीं आती अगर थूक सही पैदा हो रहा हो, और खाने में जो जायका आता है ना आपको, ये भी थूक की वजह से आता है। और जब आप मुंह में उस वक्त थूक बनता है जब आप खाना चबाते हैं, आप ज्यादा खाना चबाएं ज्यादा थूक बनेगा। तो दिन में 1 से 1.5 लीटर तक थूक पैदा होता है, रात को कम हो जाता है, और जो लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो बूढ़ी उम्र में भी थूक बनना कम हो जाता है। कभी कभार किसी दवाई और बीमारी की वजह से भी थूक कम होता है और इससे मुंह खुश्क हो जाता है, जो कि एक बीमारी है। अगर मुस्तकिल मुंह खुश्क रहे इसका इलाज बड़ा जरूरी है। तो खाने को चबाने के बाद जबान खाने को खाने की नाली में धकेल देती है, ओसोफेगस में, पीछे जबान ने उस खाने को धकेल दिया। तो अभी हमें पता चला कि जबान इंसान का कितना अहम उज्व है, इसकी हिफाजत कितनी जरूरी है। याद रखिए मुंह की जो बात है इसकी सफाई को इंग्लिश में ओरल हाइजीन कहा जाता है, और हमारे पूरे जिस्म की सफाई में मुंह की सफाई शामिल है। तो हलाल कीजिए, ब्रश कीजिए दिन में 2 दफा, और सबसे बढ़कर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत मिसवाक शरीफ करते रहिए, मुंह से खुशबू आती है और जबान और दीगर आज़ा अपने काम अच्छे तरीके से सरंजाम दे लेते हैं। आइए, जबान का काम बोलना वो तो हमने सीख लिया, एक बड़ी अच्छी नेमत और बड़ी नेमत वो है जबान का कुफले मदीना, यानी खामोश रहा जाए। खामोशी की फजीलत पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू दरदा, क्या मैं तुझे 2 ऐसे अमल ना बताऊं जिनकी मुशक्कत तो खफीफ यानी हल्की है मगर उनका अजर अजीम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ इन जैसे किसी अमल के साथ मुलाकात नहीं की गई, वो 2 अमल तवील खामोशी और हुस्न इखलाक हैं। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। जो खामोश रहा उसने निजात पाई। जिसे सलामती अजीज हो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। ये एक आम मुशाहिदा है मदनी चैनल के नाजरीन के, जिसके पास जितना इल्म होता है उसको खामोशी आती है, यानी वो उतना खामोश रहता है और अपने इल्म को शेयर करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म ढूंढता है। ये बात नहीं कि अब इल्म है तो हर जगह पर हर चीज बता दी जाए, नहीं, हर जगह पर हर चीज नहीं बताई जा सकती। जहां पर सामने वाला समझने वाला है वहीं अपना आप मुद्दा बयान करेंगे ना, जो चीज आपको आती है वो चीज आप वहीं बयान करेंगे जब उसको समझने वाले लोग हैं। तो आम तौर पर एक इंसान जो इल्म हासिल करता है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म देखता है कि किस जगह पर मैं बात करूं। तो दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत की आलमगीर मदनी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने खुली हुई किताब की तरह दर्स होता है जी, अमीर अहले सुन्नत के रसायल से, फैजान सुन्नत से, जिसको मदनी दर्स कहा जाता है। इस दर्स को देने से लोगों को बोलना आता है, दे नो हाउ टू स्पीक, एंड व्हेन दे लर्न द स्पीच स्किल दे आर गुड परफॉर्मर इन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन नॉर्मल लाइफ। जब उनको अच्छा बोलना आता है, उनको जबान का अच्छा इस्तेमाल करना आता है, तो वो अपनी जिंदगी में, अपने इदारे में, अपने बिजनेस में एक अच्छे और कामयाब इंसान साबित होते हैं। जिस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का कितना प्यारा फरमान आलीशान है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपना जायद कलाम बचा कर रखे और जायद माल खर्च कर दे, सुभान अल्लाह। और इसी तरह से मेरे मोहतरम सामीन इकराम, हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि बोलने में कसीर आफात है। अगर आप संभल के नहीं बोल रहे तो आप गलतियां करेंगे, झूठ, गीबत, चुगली, रियाकारी, निफाक, फोहशगोई, बहसो मुबासा, अपनी तारीफ, बातिल में मशगूल होना, झगड़ा करना, फजूल बात करना, ये कसीर आफात जबान पर बहुत जल्द आ जाती हैं। तो फिर हमें देखना चाहिए कि टू शूट द ब्रीज, अंग्रेजी में कहा जाता है कि वैसे ही बैठे हैं कंटीन में, बैठक में, गली के नुक्कड़ पर, और वैसे ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जाते कोई मौजू नहीं है। बल्कि एक बात का तो यहां भी ख्याल रखिए, जब भी 2 अफराद बैठे हों तो किसी तीसरे फर्द के बारे में बात ना करें। आप कोई और बात करें, कोई प्लानिंग करें, कोई अपनी लाइफ की प्लानिंग करें, कोई पूछे भाई क्या प्लान है, अगर बिजनेस मैन है तो पूछे भाई किस तरीके से हम हलाल ज्यादा कमा सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। अगर 2 बंदे बैठकर किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे ना, याद रखिए फिर बड़ा ही मुश्किल है कि वो गीबत, चुगली और बोहतान से बच सके। गपशप بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں اور پھر کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے. یہ بات اچھی نہیں ہے کہ فضول باتوں سے بھرپور نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. اللہ عز و جل کی دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سناؤ. اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی. غور تو کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کتنا پریشان کن ہوگا. بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور یہ چند گھنٹے چند لمحوں سے عبارت ہے، زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے. تو پیارے پیارے سائیں بھیو مدنی چینل کے ناظرین، نعرہ لگاتے ہیں جی، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو. الحمدللہ یہ نعرے ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے سکھائے ہیں. زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا، مدنی مذاکرہ سنیے. رمضان میں تو بہاریں ہیں، عصر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے اور نماز تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے. بہت ہی اچھے انداز سے امیر علیہ سنت گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ عز و جل ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.